अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 9
ओ नमः सिद्धे ओ नमः सिद्धे ओ नमः सिद्धे ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं प्रणम्य वीरं परमावबोधम् आशादरो मूद विबोधनाय सोपज्ञधर्मामृत धर्म शास्त्र वदामि किंचित् प्रगटीकरोति।
पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 29 पर 29। यहाँ नीचे का पैराग्राफ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ भी पुण्य के लिए ही धर्म शब्द का व्यवहार किया जाता है, यानी धर्म जो शब्द है वो पुण्य के लिए भी हम बोलते हैं, यूज करते हैं। ऊपर बताया था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ है, तो उसमें से धर्म शब्द लौकिक में भी पुण्य के लिए वापरते हैं। इस तरह लोक में शास्त्रों में पुण्य को भी धर्म कहा जाता है। यह प्रयोजन है कि उपचार का और निमित्त उपचार का और निमित्त है धर्म और पुण्य का एकार्थ संबंधी होना। ये वाक्य कैसे है? यह प्रयोजन है उपचार का। अच्छा, यह प्रयोजन है उपचार का। उपचार का प्रयोजन क्या है? तो ये पुण्य को भी धर्म कहा जाता है और निमित्त है धर्म और पुण्य का एकार्थ संबंधी होना। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। देखो ऊपर ये बताया था, ऊपर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन। अभी जो हमने वाक्य पढ़ा ना उसका ऊपर से संबंध है। ऐसे धर्म में अनुराग करने से जो पुण्य बंध होता है, यानी जो निश्चय से धर्म है उसमें जो अनुराग करता है उससे पुण्य होता है, पुण्य बंध होता है, उसे भी उपचार से धर्म कहते हैं। शास्त्रों में कहा है कि प्रयोजन और निमित्त में उपचार की प्रवृत्ति होती है, यही बात यहाँ बताया है। यह प्रयोजन है उपचार का, वहाँ बताया था ना, प्रयोजन और निमित्त में उपचार की प्रवृत्ति होती है, वही बात यहाँ उन्होंने दोहराई है। अब आगे बढ़ते हैं। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, वही से धर्म की शुरुआत है कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और वही वहां धर्म कहने में आता है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके, जिसको हम कहते हैं ज्यों का त्यों श्रद्धान, यानी क्या जैसा का वैसा का अर्थ क्या होता है? क्या क्या हेय गेय उपाय। 7 तत्व है, उसमें से मैं स्वयं जीव तत्व हूँ वो कैसा है, तो उसी का आश्रय लेने योग्य वो उपादेय है। अजीव तत्व क्या है, छोड़ने लायक है कि क्या है? गेय तत्व है, ये वहाँ उसी को जानते रहना है ना। यह मैं नहीं हूँ इतना जानने मात्र है, उसको गेय तत्व कहा। आश्रय और बंधक कैसा तत्व है, तो है ये छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक पहले मान्यता में लेंगे, वो छूटेगा जब उसकी भूमिका आएगी तब जाके छूटेगा, परंतु छोड़ने लायक है ये मिथ्या तो दशा में जब नक्की करेगा तब जाके समय दर्शन होगा। इतना नक्की करना है, श्रद्धा में लेना है, जिसको अभिप्राय कहेंगे। तो सात तत्वों का यथार्थ और कौन रह गया क्या? संवर, निर्जर, मोक्ष, उसको क्या कहेंगे? उपाधेय। कैसे? प्रकट करनी हो। संवर और निजरा एक देश, क्योंकि वो तो एक देश शुद्धि है, और मोक्ष संपूर्ण प्रकट करनी हो, इसको कहेंगे यथार्थ श्रद्धा। तो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा करके निज शुद्धात्मा ही उपाधेय है, अन्य कोई नहीं। यानी किंचित थोड़ा पुण्य भी उपकारी होगा कि नहीं, उपाधेय कि नहीं, प्रकट करने योग्य कि नहीं, तो ऐसा ही मानते आए हम आज तक। पुण्य करने से धर्म जल्दी प्रकट होगा। हम थोड़ा सदाचार करने लगते हैं, थोड़ा तो ऐसे लगते हैं हम थोड़ा आगे बढ़े, है ना? किसमें आगे बढ़े? जल्दी मोक्ष। ये तो मान्यता में हम क्या ले रहे उसकी बात चल रही है। पुण्य परिणाम होगे, जैसे जैसे हम इसके प्रति चलते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो पुण्य परिणाम भी होते रहेंगे। तो पुण्य के लिए वो नहीं, वो तो कैसा तत्व है, पुण्य परिणाम होते हुए भी ये छोड़ने लायक है, ऐसी मान्यता लेनी है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, घर में लड़की पैदा हुई तो क्या मानते हैं? विदा करना। तो तभी विदा करो ना जल्दी से जल्दी। वक्त आता है, परंतु श्रद्धा में कब लिया? जन्म लेते ही। ये तो पराया धन है, पराई लक्ष्मी, ऐसा हम कहते भी है। तो धक्की तो तभी किया, और भेजेंगे जब भेजें, उसका समय आएगा तब जाके उसको भेजेंगे, तब तक तो उसकी अच्छी निगरानी भी करेंगे। ऐसे यहाँ पुण्य है, यह है छोड़ने लायक, ये श्रद्धा में लेना है। तो छोड़ने लायक है तो क्या पाप करने लायक है? तो नहीं, पुण्य पाप दोनों ही छोड़कर। यहाँ पुण्य को इसलिए लिया कि सारी लौकिक में पाप छोड़कर पुण्य करो ऐसा उपदेश देने वाले सब है, परंतु वो दोनों ही छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य है, आत्मा में स्थिर करने होने योग्य है, ये बात यहाँ जिनागम में बताई। परंतु वो छूटेगा अपने समय पर, परंतु छोड़ने योग्य है ऐसा निर्णय नहीं करेंगे तब तक वो नहीं छूटेगा, तभी तक शुद्ध भाव प्रकट नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की रुचि का नाम सम्य दर्शन। ये रुचि यहाँ पर विचारणाला में भी ऐसे ही, पर द्रव्यनतय भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बला है, यहाँ पर भी यही बात बता रहे। सम्यक दृष्टि पुण्य और पाप दोनों को ही है ये मानता है, फिर भी पुण्य बंध से बचता नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात बताई उन्होंने। मान्यता में तो दोनों को है ये माना है, परंतु अभी छूट नहीं रहा उसको, उसके तो उच्च दर्जे के पुण्य के परिणाम होते रहेंगे। है ये मानकर भी, देखो एक है मानना और एक है होना या करना भी कहेंगे उसको। तो कहते है ये मानकर भी वह पुण्य बंध कैसे करता है, ये प्रश्न हो सकता है ना? एक तरफ है मानते हो और एक तरफ तो करते रहते हो। यहाँ तो कहते पुण्य है पुण्य है, और फिर दिन भर तो स्वाध्याय और ये तो पूजा और यही बात चलती है, तो आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो, ऐसी बात है क्या? तो कहते उसके लिए एक दृष्टांत के द्वारा ब्रह्मदेव जी ने द्रव्य संग्रह की टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये ब्रह्मदेव जी ने जो उसकी टीका लिखी है उसमें वो बताते हैं, जैसे कोई पुरुष किसी अन्य देश में स्थित किसी सुंदरी के पास से आए हुए मनुष्यों का उस सुंदरी के प्राप्ति के लिए दान सम्मान आदि करता है, उसी तरह सम्यक दृष्टि भी उपादेय रूप से अपने शुद्धात्मा की ही भावना करता है, परंतु चारित्र मोह के उदय से उसमें असमर्थ होने पर निर्दोष परमात्मा स्वरूप अरहंतों और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओं की दान पूजा आदि से तथा उनके गुणों के स्तवन आदि से परम भक्ति करता है। यहाँ क्या कहते हैं? अपने शुद्धात्मा में निरंतर स्थित नहीं हो सकता, तो शुद्ध भाव में से बाहर अशुद्ध भाव में शुभ भाव आएंगे, तो उसमें क्या करता है वो, तो पंच परमेष्ठी की भक्ति करता है। इस भक्ति का उद्देश्य भी क्यों भक्ति करता है, वो भी किस लिए करता है, तो कहते हैं परमात्मा पद की प्राप्ति ही होता है, क्योंकि जिन्होंने इसको प्राप्त किया है और जो उस मार्ग पर बहुत आगे चले हैं, तो उनके प्रति सहज इसको बहुमान आता है और उनकी भक्ति भी वो हम वैसा हो जाए इसलिए उनकी भक्ति सहज आती है। तथा प्रयोजन होता है विषय कषाय से मन को रोकना। देखो अज्ञानी भी भक्ति करते हैं और ज्ञानी भी करते हैं। ज्ञानी भी पंच परमेश्वर की भक्ति करेंगे, वो भी नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। अज्ञानी भी करता है, कब करता है, जब कोई संकट आता है विशेषता। और वो नमोकार मंत्र का महात्म्य किसमें समझता है, तो हमारा कोई लौकिक संकट दूर हुआ ये उसका सबसे बड़ा महत्व। फिर उसके लिए बहुत सारे अन्य अन्य कथाएं भी होगी और हो भी सकता है कि उनकी वो बातें हुई हो, परंतु वही उसका सर्वमात्र यानी बहुत अच्छा उसका फल मानना, ये तो उसका डिवेल्युएशन, क्योंकि उनकी भक्ति सहज रूप से आती है, क्योंकि वो जो मार्ग पर चले हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल मार्ग पर चले, वो मार्ग उन्होंने पूरे जगत को बताया। अरिहंत ही सिद्ध हुए और सिद्ध होने के पहले वो तीर्थंकरों ने तो ये मार्ग बताया। अरिहंत भगवान तो अभी बता रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी वही, वो तो आचरण से भी बता रहे हैं और उनके उपदेश से भी हमें वो मार्ग मिलता है, उनके ग्रंथ रचना से भी हमें मार्ग मिला। इसलिए सहज रूप से उनके प्रति भक्ति अभाव प्रकट होता है। और प्रयोजन क्या उसका, विषय कषाय से मन को रोकना। इनके विषयों के प्रति की रुचि कम हो जाती है ज्ञानी की, और उसका उपयोग किस में लगेगा, तो अरिहंत आदि की भक्ति में लगेगा, स्वाध्याय में लगेगा, तीर्थ करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, इसी में उसका उपयोग लगेगा। न तो उसके इस भव संबंधी भोगों की चाह होती है, क्योंकि भोगों में सुख की कल्पना अब नहीं रही उसकी। हाँ, कुछ अभी चारित्र मुख के उदय से कहो या उसके वश कहो, या जो अभी चौथी गुणस्थान वाला है तो उसके उनके प्रति कुछ राग भाव होगा, इच्छाएं होगी, परंतु उनको करने जैसा नहीं मानता। तो कहते न तो उसके इस भव संबंधी भोगों की चाह होती है और न परभव संबंधी भोगों की चाह होती है, यानी कोई ये जो उसके जो पुण्य परिणाम हो रहे हैं, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे आगामी भव में ऐसे ऐसे प्राप्ति हो, मुझे वो बहुत ऐसी कोई उसको चाह नहीं है। इस प्रकार निदान रहित, ये निदान क्या होता है, पुण्य के फल में या कोई तप के फल में आगामी भव में कोई वांछा का होना, या तो ऐसा हो सकता है मैं इस जीव का बुरा कुछ कर दूं, इसका नाश कर दूं, या ऐसा भी होता है कि मुझे ऐसा ऐसा वैभव प्राप्त हो, मुझे ऐसा ऐसा पद की प्राप्ति हो जाए, तो इसको कहेंगे निदान। यानी कोई तो मुनि अवस्था तक की भी धारण करता है, वो भावलिंगी की बात नहीं है, परंतु वो चाहते कि उस तप के फल में उसको अमुक कुछ वृद्धि मिले या कुछ ऐसे विशिष्ट पद प्राप्त हो जाए, तो उसको कहेंगे निदान या निदान बंद। यहाँ कहते इस प्रकार, कौन सी, इस भव संबंधी भोगों की चाह या परभव संबंधी भोगों की चाह का होना, यह है निदान। इस प्रकार निदान रहित परिणाम से, और ये समय दृष्टि कैसे है, तो निदान रहित परिणाम, नहीं चाहते हुए भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है। ये चाहना तो पाप है, थोड़ा पुण्य बंधेगा भी, क्योंकि वो तो कुछ कर रहा है, परंतु ये तो उसके पीछे उसके कुछ आसक्ति पड़ी है, लोभ है, उससे तो पाप बंधेगा, और मिथ्या तो है ही है, तभी तो वो चाहता है, इसलिए उसके कारण तो पाप बहुत सारा बन रहा है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि है, वो कोई भोगों की वांछा नहीं करते हुए भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है, यानी पुण्य कर्म का आश्रय बंध दोनों होते हैं उसका, और उसका फल भी उसको मिलेगा। उस पुण्य बंध से वह मरकर स्वर्ग में देव इंद्र आदि होता है, वहां भी स्वर्ग की संपदा को जीर्ण तृण के समान मानता है, उसको उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस का अनुभव किया है और उसको आत्मा की ही लगन लगी है, उसको बाह्य वैभव की कुछ महत्ता नहीं लगती। वो मिले भी तो क्या बहुत कुछ मिल गया, अरे बहुत मैं बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं उसके होता है। वहां से वंदना के लिए विधेय क्षेत्र में जाकर देखता है कि समोसरण में वीतराग जिनदेव विराजमान है, भेद रूप या अभेद रूप रत्नत्रय के आराधक गणधर देव विराजमान है, क्योंकि वो तो मुनि है ना, गणधर जो है वो मुनिराज है, यानी उसको सम्यक दृष्टि है। तो वहां तो विधेय क्षेत्र आदि में तो हमेशा जो वहां तो तीर्थंकर तो विराजमान ही होते हैं, विद्यमान रहते हैं, तो उनके दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए वहां चले जाएंगे। उससे उसकी आस्था धर्म में और भी दृढ़ हो जाती है, क्योंकि वहां तो साक्षात तीर्थंकरों को देख रहा है, साक्षात उनका उपदेश सुन रहा है, तो धर्म में जो आस्तिक्य भाव है ऐसा ही है, ये दृढ़ता हो जाती है उसकी। यही तो कौन सी बात है, यहाँ से वो देव में जाएगा तब की बात है। यहाँ क्या लिखा देखो, देव इंद्र आदि होता है, स्वर्ग की संपदा को तृण समान मानता है, और वहां से नहीं स्वर्ग से, वे तो देव तो विहार करके जा सकते हैं। मनुष्य भी जैसे भी यहाँ कुंकुंद आचार्य गए, पर ऐसे विरल है कि यहाँ से जाने वाले, यहाँ तो स्वर्ग के देवों की बात चल रही मुख्यतः, क्योंकि उसके कारण वो और भी दृढ़ हो जाते हैं उसकी श्रद्धा। वह चतुर्थ गुण स्थान के योग्य अपनी अविरत अवस्था को नहीं छोड़ते हुए, भोगों को भोगते हुए भी, क्या कहते हैं ये चौथा गुण स्थान का नाम क्या है, अविरत समय दृष्टि, अविरत, अभी उसके कोई व्रत नहीं है, ना एक देश व्रत है पंचम गुण स्थान वर्ती जैसे, ना सकल व्रत जिसको हम कहेंगे सकल संयम, तो उसके अविरति है, अविरत यानी असंयम है। कौन कौन से असंयम है, कितने प्रकार के होते हैं अविरति, कितने प्रकार की है मालूम है आपको, मालूम है याद नहीं है अभी, हाँ बारह प्रकार के, जिसको प्राणी संयम, प्राणी संयम छह प्रकार के जैसे, हाँ पांच स्थावर और एक तिरस्कार जिसको हम कहेंगे ना, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और यहाँ त्रस का एक, ये जो छह काय के जीवों के अभी रखे, यानी उससे हिंसा से वो विरत नहीं हुआ, अभी हटा नहीं है, यानी वो कर रहा है मार रहा है ऐसी बात नहीं है, परंतु अभी चौथे गुण स्थान वाले को उनका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता है, इसलिए उसको अविरति कहा। ये तो प्राणी संयम नहीं है वो अविरत, और इंद्रिय संयम भी नहीं है, वो इंद्रियों को वो भोगने जैसा है या उसमें सुख है ऐसा मान्यता में नहीं है, फिर भी उसकी अभी वृत्ति है उसमें, उससे वो हटा नहीं है परिपूर्ण रीति से, तो कहते वो बारह प्रकार हो जाते उसके अविरति के। ये है चौथे गुण स्थान के भूमिका के अनुसार, मिथ्या दृष्टि ऐसा स्वच्छंद नहीं है, फिर भी उसकी अविरति चल रही है, कोई भी व्रत नहीं है फिर भी उसका सम्य दर्शन चल रहा है। यदि चतुर्थ गुण स्थान के योग्य अपनी अविरत अवस्था को, दशा को नहीं छोड़ते हुए, भोगों को भोगते हुए भी, यानी भी सम्य दर्शन हुआ तो इसे मुंह लटका के बिल्कुल एकदम उदासीन सभी, ऐसा नहीं है, जैसे पहले वो घर गृहस्थ में रहता है, बाल बच्चों के साथ व्यापार धंधा कर रहा है, वो सब उसकी बातें चल रही, उसकी मान्यता में तो कितना जमीन आसमान का फेद फेद हुआ, उसके तो आत्मा की अनुभूति हो गई है, बाह्यता अज्ञानी तो पता भी नहीं चले कि इसकी ऐसी अवस्था है, क्योंकि कोई व्रत आदि तो है ही नहीं उसके, और लौकिक जिसका अभ्यास नहीं है उसको तो व्रतों की महिमा आती, उन्होंने इतना तो त्याग किया कि नहीं किया, पर ये मान्यता का पता तो बाहर से होता नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं वो भोगों को भोगते हुए भी, जैसे अच्छा है सारे भोग भोग और हम समय दृष्टि को, ये बात कहने की नहीं है, बिल्कुल होती, अन्याय अनिति का त्याग हुए बिना समय दर्शन ही नहीं होता, समय दर्शन होने की पात्रता में है ये, अन्याय का त्याग, अनिति का त्याग, अभक्ष्य भक्षण का और कुदेवादी का, ये तो समय दृष्टि के क्या उसको होने के पहले पूर्व अवस्था में ये नहीं होगी, उसका सदाचार तो होगा ही होगा उसका, यही इसीलिए कहा मिथ्या दृष्टि ऐसा स्वच्छंद ही नहीं है, फिर भी वो अभी कोई चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती के सारे आभूषण वगैरह पहनेगा, चक्रवर्ती जैसा पूरा उसका थाट माट सब होगा, तो समय दृष्टि हुआ तो इसलिए सफेद वस्त्र धारण करके बिना अलंकार के वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। जो इंद्र है यहाँ कल्याणकों में आते हैं तो पूरे अपने ठाट बाट के साथ आएंगे यहाँ तो कहते भोगों को भोगते हुए भी हम किसी की तरफ देखते तो क्या कर रहा है, क्या क्या पहन रहा है, कैसे इसको देखते हैं और उसके द्वारा हम नक्की करना चाहते हैं ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है, उससे उसकी पहचान नहीं हो। तो भोगों को भोगते हुए भी अपने योग्य, ये बात पहले बताई थी, चतुर्थ गुणस्थान के योग्य अविरति है ना? और भोगों को भोगते हुए भी धर्म ध्यान पूर्वक काल बीता है, वहां पर भी उसका तत्वों का चिंतन चलता रहता है, बारंबार आत्मा की अनुभूति भी करता रहता है, स्वर्ग से च्युत होकर। अब ये सम्यक दृष्टि देव की बात चल रही, मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है किंतु तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पद पाने पर भी मोह नहीं करता। और वहां देव अभी मैं जाके कोई चक्रवर्ती बन जाऊं या तीर्थंकर हो जाऊं ऐसे कोई उसके नहीं होते। और जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप दोनों से रहित निज परमात्मा के ध्यान से मोक्ष प्राप्त करता है। किंतु मिथ्या दृष्टि, अभी तो समय दृष्टि क्या होता है क्या करता है वो बात, मिथ्या दृष्टि तीव्र निदान पूर्वक बांधे गए पुण्य से, उसने भी वैसा ही तब वगैरह, ये तो अविरत समय दृष्टि था मान लेते हैं, और वो तो मिथ्या दृष्टि उसने तब भी कुछ अंगीकार किए थे। तो कहते तीव्र निदान पूर्वक कि मुझे ऐसा फल प्राप्त हो, ऐसा निदान उसने किया, उस पूर्वक बांधे गए पुण्य से भोगों को प्राप्त करके आगे क्या कहा, रावण की तरह नरक में जाता है। ये नारायण प्रति नारायण पद ऐसे होते हैं, तो निदान किया है और वो अर्धचक्री हुए हैं और दोनों ही नरक कामी होते हैं नियम से। इस तरह 24 नंबर में यहाँ का लास्ट करते, धर्म और पुण्य दोनों एकार्थ संबंधी है, इसलिए पुण्य को उपचार से धर्म कहा है। वस्तुतः पुण्य धर्म नहीं है, यानी इन रियलिटी सच देखा जाए तो पुण्य है वो धर्म नहीं है। धर्म पुण्य से बहुत ऊंची वस्तु है। जब तक पुण्य है संसार से छुटकारा संभव नहीं है। और यहाँ तो सारे पुण्य की ही चाह रखते हैं, क्योंकि संयोग हमें अनुकूल संयोग बहुत अच्छे लगते हैं। अनुकूल संयोग क्यों, हमने तो इतना पुण्य किया ना, पुण्यवान किया है हम तो, ऐसा कहते ये तो हमारे बाप दादों की पुण्य है जो हम भोग रहे हैं, ऐसा ये सच है कि नहीं? हमने तो ऐसा भी सुना है हमारे जो बड़ा वाड़ा है, इमारत है, हवेली है, उसकी पुण्य है, वो जड़ घर के भी पुण्य होता होगा। हाँ ऐसे आपने सुना कि नहीं? क्यों ये हमारा घर है ना, हाँ वो है। क्या करे, जिस जीव का जो पुण्य है वो तो साथ में लेके जाएगा कि अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। आप कहेंगे संपत्ति तो छोड़ी, अब पुण्य भी थोड़ा छोड़ के चला जाएगा तो हमारा अच्छा होगा, कल्याण होगा। जब तक पुण्य है संसार से छुटकारा संभव नहीं है। और जिसको अभिप्राय में पुण्य अच्छा माना है, अभिप्राय में पुण्य छूटेगा नहीं, समय दृष्टि को भी और उच्च दर्जे का पुण्य बनता है, वो छूटेगा जब, छूटेगा जब कायम के लिए आत्मा में स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ तो कहते हैं कि जब तक पुण्य है संसार से छुटकारा संभव नहीं है, क्योंकि वो पुण्य बंधेगा, उसका फल प्राप्त होगा, वो फिर भोगेगा, वो भोगने के समय में और नए कैसे परिणाम करेगा, वैसे और अन्य अन्य कर्म बंधेंगे। पाप की तरह पुण्य से भी मुक्ति मिलने पर ही संसार से मुक्ति मिलती है। देखो मैं बचपन में क्या सोचती थी, पाप बहुत किया, अभी थोड़ा पुण्य करेंगे तो वो तो आपस में नलीफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पाप का भी उदय आता रहता है, पुण्य का भी, वो तो अल्टरनेटली चलती रहती बात कहा। तो जो जो बांधा है वो भोगकर ही छूटेगा। ये समय दृष्टि के कितने ही पाप कर्म बिना भोगे के कैसे है, वो तो अभी अलग थियरी है, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे कहते हैं, धर्म आनुषंगिक फलदान पूर्वक मुख्य फल को भी पूर्णतया देता है। हमने क्या देखा था? एक तो मुख्य फल और एक आनुषंगिक यानी साइड बाय साइड और मिलता है एडिशनल को। जैसे मुख्य फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। धर्म यानी वो कौन सा धर्म? जैसे निश्चय से जो धर्म है, वितराग जो धर्म है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है वितरागता से। और क्या होता है आनुषंगिक? क्या फल हमने देखा अभी? यानी वो पुण्य बंध हो रहा है ना, क्योंकि साथ में उसके जो शुभ भाव है, उसके स्वर्ग की या चक्रवर्ती पद आदि जो कोई अन्य जो सांसारिक विभूतियां है उसकी प्राप्ति होती है। तो कहते मुख्य फल को पूर्णतया देता है, यानी ऐसा नहीं कि करे और शायद नहीं होगा मोक्ष, तो कि हमने इतनी प्रैक्टिस की, हमने इतना ये स्वाध्याय किया, हमने इसके लिए प्रयत्न किए और उसका फल नहीं मिले तो ऐसा कोई नहीं सोचता है ना कि मैं व्यापार धंधा करूंगा और वो फिर मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊं, तो ये तो कोई नहीं सोचता। शादी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं मुझे वैधव्य आ जाए तो शादी के, ऐसा कोई नहीं सोचता। अमेरिकन लोग ऐसे सोचते है, वहां के बच्चे बहुत डरते हैं शादी से। देखो ये 25 नंबर को हम पढ़ेंगे, ऊपर पहले श्लोक पढ़ेंगे। धर्माद्रुफलमभ्युदयति करणे हृद्गीर्यमाणो निशम यत् प्रीणाति मनो वहन भवरसो यत् पुंस्यवस्थान्तरम् स्याजन्मज्वर संज्वर व्यपरमो पक्रम्य निस्सीमत तादृक्षर्म सुकाम्बुधि प्लवमयम् सेवाफलम् त्वस्य तत्। जैसे राजा के समीप आने वाले सेवक को दृष्टिफल और सेवाफल की प्राप्ति होती है, वैसे ही क्या कहा, दृष्टिफल और सेवाफल यानी उसको देखने से, अभी उसका विशेषार्थ में पढ़ेंगे हम, और सेवा करने से भी कुछ मिलता है और सामने गया तो भी राजा पूछ देगा उसको, वैसे ही धर्म का सेवन करने वाले को धर्म से ये दो फल प्राप्त होते हैं। हमने देखा ना आनुषंगिक फल और मुख्य फल, इंद्रियों के द्वारा होने वाला और दिन रात रहने वाला जो संसार का रस मन को प्रसन्न करता है वह दृष्टिफल है, तथा संसार रूप महाज्वर के विनाश से उत्पन्न होने वाला अमर्याद, अमर्याद यानी असीम, कोई लिमिटलेस, ऐसा अनिर्वचनीय जो वचन में कहे नहीं सकते, आगम प्रसिद्ध, आगम में जिसके गुण गाए हैं, ऐसा सुखरूपी अमृत के समुद्र में अवगाहन रूप, अवगाहन करने ने उसमें डुबकी लगाना, जो पुरुष की अवस्थांतर है, अवस्थांतर अन्य अवस्था है, कैसी अवस्था है, संसार अवस्था से विपरीत आत्मिक अवस्था है, उसकी प्राप्ति सेवा फल है। दो फल कौन से बताए? एक दृष्टि फल और एक सेवा फल। और दृष्टांत के लिए राजा और सेवक की उपमा दी। अब इसी को हम थोड़ा विशेषार्थ में पढ़ लेते हैं। देखो राजा आदि के समीप में आने वाले, आदि यानी कोई और भी कोई बड़े पुरुष होंगे, बड़े सेठ है या अन्य कोई, उनके समीप में आने वाले सेवक को दो फलों की प्राप्ति होती है। प्रथम दर्शन में राजा उसे ग्राम, सोना, वस्त्र आदि देता है, यह तो दृष्टि फल या राजदर्शन फल है। और सेवा करने पर उसे सामंत आदि बना देता है, यह सेवा फल यानी कोई बड़ा अधिकारी बना देता है, यह सेवा फल है। इसी तरह यह तो हुआ दृष्टांत, धर्म का सेवन करने वाले को भी दो फलों की प्राप्ति होती है। उसे मन को प्रसन्न करने वाला सांसारिक सुख मिलता है, यह दृष्टिफल है। दृष्टिफल का मतलब है धर्म विषयक श्रद्धान से होने वाले पुण्य का फल। ये सम्य दर्शन से कोई पुण्य नहीं बन रहा है, पर सम्य दर्शन के साथ वहां जो वो रुचि रूप जो अनुराग रूप भाव है पंच परमेष्टी की तरफ तत्वों के प्रति, ये जो शुभ भाव है, तो उसके कारण पुण्य बनता है, वो पुण्य का फल मिलता है। सांसारिक सुख उसी का फल है तथा धर्म का सेवन करते हुए निज शुद्धात्म तत्व की भावना के फल से, भावना यानी इच्छा करना ये अर्थ नहीं है, भावना ने उसरूप भवन यानी एकाग्र होना, आत्मा में स्थिरता करना, उसी को भावना कहते हैं। तो कहते निज शुद्धात्म तत्व की भावना के फल स्वरूप जो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, और जो अनंत सुख का समुद्र है वह सेवा फल है। हम तो कहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति में तो अनंत सुख का तो वहां साक्षात वेदन है, उसको समुद्र कहा है। परंतु जिस समय समय दर्शन की प्राप्ति हुई उस समय कुछ मिला कि नहीं मिला, तो कहते अतीन्द्रिय आनंद, तो वहां तो शुरुआत हो गई उसकी। यानी पुण्य भी करता है तो उसका इमीडिएट तो फल नहीं मिलेगा, तो भविष्य में मिलेगा उधारी। ऐसे उधारी शुद्ध भाव में नहीं है, रोकड़िया। जिस समय आत्मा की दृष्टि करो उसी समय वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है, और फिर वो तो बढ़ते ही चला जाता है। लोग ऐसा मानते हो कि अभी थोड़ा दुख सहन करो तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो जो सुख की प्राप्ति होनी है तो सुख का मार्ग दुख रूप कैसे हो सकता है? तो जहां मोक्ष में अनंत सुख है वहां मोक्ष मार्ग दुख रूप कैसे हो सकता है? जो कहते हैं वो तो क्या मुनि होकर इतना कष्ट सहना पड़ेगा तब जाके मोक्ष मिलेगा, यानी उसमें भी उसने दुख रूप माना है अभिप्राय में, कहीं ना कहीं उस मुनि अवस्था को उसने दुख रूप मान लिया है, क्योंकि उसने तो बाह्य अवस्था को ही मुनिपना माना है। अंतरंग में जो स्थिरता है, अंतरंग में जो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है उसका तो पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा उसने सोच लिया है कि मुनि जीवन बहुत कष्टकारी है। वो बिचारे कौन? मुनिराज। ये कौन कह रहे? मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अविचारी। हम घर में रहते हैं, अभी घर में धूप हो या बहुत बरसात हो या ठंडी हो तो हम कैसे अच्छे रहते हैं घरों में, और वो बिचारे वनों में घूमते हैं, बदन पर कपड़े नहीं है, ये धूप वगैरह सहन करते रहते हैं, तो वो बिचारे और हम सुखी। यानी ये क्या है? उसकी मिथ्या मान्यता। वे तो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं और वो सच में ऐसा जान रहे हैं कि ये जो सारे है ना वो दुखी है, और उनको पता भी नहीं कि मैं दुखी हूं, क्योंकि इसी सांसारिक अवस्था को कहो या जो अज्ञान दशा में मैं सुखी हूं मानकर ही जो अपना रोज का जीवन चला रहे, उसको मालूम नहीं कि सुख का उपाय क्या है और वो कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि ये बेचारे सारे प्राणी क्योंकि उन्होंने पूर्व अवस्था में ये सारा अनुभव किया था और उसको छोड़कर अभी सच्चा सुख प्राप्त किया है। इस तरह धर्म से आनुषंगिक सांसारिक सुख पूर्वक मुख्य फल मोक्ष की प्राप्ति, ये फल होता है। लोगों को लगता है ना कि हमारा हाथ का जो छूट जाएगा ये सब, हम इसके पीछे लगेंगे ना, धर्म के पीछे। आप तो पागल हो ही गए हैं, और हम तो हमने इतना जो इकट्ठा किया है संयोग वो छूट जाएगा हमारे से, यानी उसको अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है। सोचता है कि हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, एक दो घंटे इसमें चले जाएंगे तो हमारा उतना धंधे का नुकसान हो जाएगा। आगे 23 पद्यों के द्वारा धर्म के अभ्युदय रूप फल का वर्णन करते हैं। उनमें से प्रथम 14 श्लोकों के द्वारा सामान्य रूप से उसे स्पष्ट करते हैं। 26 नंबर पहले ऊपर पढ़ेंगे।
वंशे विश्वमहिम निजन्म महिमा काम्य समेषां शमो मंदाक्षं सुतपो जुषां श्रुतं श्री ब्रह्मर्धि संघर्षक त्याग श्री ददुराधिदान निरनु क्रोश प्रतापो रिपु श्री श्रृंगार गरस्तरंगित जगत धर्माद्य शंचांगिना।
धर्म से प्राणियों का ऐसे वंश में जन्म होता है जिसकी महिमा जगत व्यापी है, अर्थात जिसकी महिमा तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कराने में समर्थ होती है,
यानी बड़े वंश में जन्म लेता, बड़े कुल में उसका जन्म होता है।
ये सांसारिक बात चल रही है, लौकिक फलों की बात हो रही है। धर्म से प्राणियों को ऐसे तीर्थंकर आदि पद प्राप्त होते हैं जिनकी चाह सब लोग करते हैं।
ये धर्म कौन सा धर्म है? तो सच्चे धर्म के साथ होने वाला पुण्य परिणाम है, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है।
वो समय दृष्टि ऐसा नहीं सोचता, अरे मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधूंगा तो मुझे बहुत लोग मानेंगे, कमा करेंगे, ऐसी कोई उसकी चाह नहीं होती। वो सहज रूप से बनती है, समय दृष्टि को ही बनती है, मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं बनती। अपराध करने वालों को दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी धर्म से ऐसी सहन शक्ति प्राप्त होती है जिसे देखकर अच्छे अच्छे तपस्वियों की भी दृष्टि लज्जा से झुक जाती है। इन्हें धर्म है, ये कौन सा धर्म है? सच्चा धर्म, और उसके साथ पुण्य भी बन रहा है, ये इसकी बात चल रही है। धर्म से प्राणियों को ऐसा श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है जो तपोबल के द्वारा बुद्धि आदि वृद्धि को प्राप्त ऋषियों के ज्ञानातिशय से भी टक्कर लेता है। धर्म से प्राणियों को दान देने की ऐसी क्षमता प्राप्त होती है जो कुबेर के मन को भी निर्दयता पूर्वक व्यथित करती है, यानी वो दानशीलता उसके होती है। धर्म से प्राणियों को ऐसा प्रताप प्राप्त होता है जो शत्रुओं की स्त्रियों के श्रृंगार के लिए विष के समान है, तथा धर्म से ऐसा यश प्राप्त होता है जिसमें जगत एक लहर की तरह प्रतीत होता है, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त होता हुआ वह यश अलोक को भी व्याप्त करने के लिए तत्पर होता है। ये तो साहित्यिक भाषा में उसको उनको वर्णन किया। आगे कहते हैं, बुद्धि आदि सामग्री भी अपना फल देने में पुण्य का ही मुख देखा करती है,
यानी पुण्य से ही बुद्धि आदि की सामग्री प्राप्त होती, बस इतनी बात है। ये उन्होंने थोड़ी साहित्यिक भाषा में उसको बताने की कोशिश की है। ये नीचे की लाइन बराबर प्रिंट हुई है मेरे में? नहीं हुई। बढ़ता हुआ धैर्य और
बुद्धिगत उत्साह
है क्या आपके उसमें?
और बुद्धिगत उत्साह,
वृद्धिगत क्या? वृद्धिंगत, वृद्धिंगत। देखो वहाँ लिखता है, देखो बढ़ता हुआ धर्म
धैर्य,
धैर्य, अच्छा धैर्य, हाँ धैर्य लिखा ना, धैर्य और
वृद्धिंगत,
यानी बढ़ने वाला,
ये सब पुण्य के बिना व्यर्थ है।
हाँ आगे लिखा है, अच्छा ये इतना, ये दो शब्द यहाँ हमारे वृद्धिंगत बिंदी है, वृद्धि के ऊपर बिंदी, वृद्धिंगत यानी बढ़ता हुआ। हम कहते हैं हमारा आनंद वृद्धिंगत हुआ, यानी वृद्धि को प्राप्त हुआ। अभी हम इसको पढ़ेंगे, आगे पहले वो श्लोक पढ़ेंगे। 27 नंबर,
दीतीक्ष्णानुगुण कालो व्यवसाय सुसाहस धैर्यमुद्यतोत्साह सर्वं पुण्यादृते वृथा।
कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि, कुश समझते हाँ घास में वो जो ऐसे पॉइंटेड जो होती है आगे, हाँ उसको कुश कहते हैं। हाँ ग्रास का आगे का वो एक प्रकार का वो गवत होती, गवत जिसको मराठी में कहते हैं ना उसको कुश कहते हैं। कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि, कार्य के अनुकूल समय, कार्य के प्रति साहसपूर्ण अध्यवसाय, यानी उस वैसे साहसपूर्ण वैसे उसको वैसे भाव होना, परिणाम होना, बढ़ता हुआ धैर्य और वृद्धिंगत उत्साह। क्या क्या लिखा? तीक्ष्ण बुद्धि, कार्य के अनुकूल समय की प्राप्ति होना, कार्य के प्रति साहसपूर्ण अध्यवसाय ने वैसे परिणाम हो जाना, बढ़ता हुआ धैर्य और वृद्धिंगत उत्साह, ये सब पुण्य के बिना व्यर्थ है। अर्थात पुण्य का उदय होने पर ही ये सब प्राप्त होते हैं, और पुण्य के उदय में ही कार्यकारी होते हैं। क्या कहा? ये उत्साह तो बहुत है कार्य के प्रति, परंतु सफल नहीं होता, पुण्य नहीं होगा तो ये वह है, ये सब में लगा लेना। आगे पढ़ते हैं। यदि इष्ट की सिद्धि में, इष्ट ने जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, अनुकूल लगे, इष्ट की सिद्धि में ने प्राप्ति में पुण्य कर्म स्वतंत्र है। अर्थात यदि पुण्य के ही प्रताप से कार्य सिद्धि होती है तो पुण्य अपने कर्ता के क्रिया की अपेक्षा क्यों करता है? क्या कहा? ठीक है ना, कार्य के प्रति उत्साह होता है, धैर्य होता है, वैसे परिणाम होते हैं उसके कार्य करने के प्रति, क्योंकि तो पुण्य ही सब कुछ देता है, तो ये तो करने वाले का उत्साह, उसके भाव, इसकी अपेक्षा क्यों है उसके, तो उस क्रिया की अपेक्षा क्यों करता है? अर्थात बिना कुछ किए पुण्य से ही इष्ट सिद्धि क्यों नहीं होती? ख्याल में प्रश्न कर, यहाँ तो हम क्या सोचते, हमने इतने प्रयत्न किए तभी ये मिला, परंतु ये प्रयत्नों का ऐसा फल मिलना ये पुण्य के से मिला है कह रहे, तो पुण्य से ही मिलता है तो प्रयत्न के बिना भी होना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर उत्प्रेक्षा पूर्वक देते, ये कभी सुना है उत्प्रेक्षा? आपने सुना है? एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका अर्थ क्या है? ऐसा ही कोई दृष्टांत वगैरह देकर समझते हैं, समझाते हैं, ये साहित्य की भाषा है, उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी कोई गहने दागहने नहीं होते हैं। 28 नंबर। मनस्विनामी सितवस्तु लाभा रम्योभिमान सुतरामितीव पुण्यं सुहृत् पौरुषदुर्मदानां क्रिया करोति इष्ट फलाप्ति द्रुप्तां। तो कहते हैं, यहाँ हम अर्थ पढ़ेंगे, अभिमानी पुरुषों को इच्छित वस्तु का लाभ होने जाने पर, हो जाने पर अत्यंत मनोरम अभिमान हुआ करता है। क्या कहते हैं? अभिमानी पुरुष को उसने जैसा चाहा वैसा हुआ तो उसको क्या होता है? अभिमान और ज्यादा के, देखो मैंने ये कर दिखाया, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा होता है। मानो इसीलिए छल रहित उपकारक पुण्य अपने पौरुष का मिथ्या अहंकार करने वालों की क्रियाओं को यानी कार्यों को इष्ट फल की प्राप्ति के अभिमान रस से रंजित कर देता है। अर्थात इष्ट फल की प्राप्ति तो पुण्य के प्रताप से होती है, किंतु मनुष्य मिथ्या अहंकार करते हैं कि हमने अपने पौरुष से प्राप्ति की है, यानी जैसे पुण्य उनको वो अभिमान करने के लिए प्रेरित करता है, रंजित करता है, यानी क्या ना, ये छल रहित उपकारक पुण्य मानो इन्हें, फॉर एग्जाम्पल एज इफ, जैसे हम कहेंगे उत्प्रेक्षण है एज इफ, कि छल रहित जो उपकारक पुण्य है, जो अपने पौरुष का जो मिथ्या अहंकार करने वाले की जो कार्यों को इष्ट फल की प्राप्ति के अभिमान रस से रंजित कर देता है। यानी जो पुण्य, ये जो इष्ट की प्राप्ति तो पुण्य के प्रताप से होती है, पुण्य के उदय से होती है, और वो मनुष्य मिथ्या ही अहंकार करते कि देखो हमने अपने पुरुषार्थ से इतना धन कमाया, इतने संयोग इकट्ठे किए, ये मैं कर रहा हूँ, मैं होता उसमें। देखो ये है वस्तु स्थिति, पुण्य भी है निमित्त रूप से लिया है, परंतु कहते जो पूर्व में जो कोई पुण्य बांधा है उसका भी उदय होगा। कितने हम देखते लौकिक में ऐसी चर्चा भी होती है कि ये इतना भला आदमी है, या स्वयं पर घटित करते कि हमने आज तक किसी को कोई दुख नहीं दिया है, हम इतना सज्जनता पूर्वक रहते हैं, धर्म की बात ये जो कुछ है साध्य आदि करते हैं, फिर भी हमें ऐसे अनिष्ट संयोग है, और कोई वो चोर है, स्मगलर है, अभी कोई जो कोई नेता है तो इतनी उल्टी पिटी बातें करता है और अच्छा मौज में रहता है, इससे क्या समझना है? हाँ, उनका पूर्व का पुण्य चल रहा है, हमारा पुण्य का पूर्व का पाप का उदय चल रहा है, परंतु उस पूर्व के पुण्य से जो मिल रहा है और वो क्या सोच रहे है? मैं अपने कर्तृत्व बुद्धि से इतना सब एम्पायर खड़ा कर दिया है। आगे कहते हैं विशिष्ट आयु आदि भी पुण्योदय के निमित्त से ही होती है। ये मनुष्य आयु है यो पुण्य प्रकृति, तो लंबी आयु बांधी कब? जहाँ शुभभाव है, जहाँ जिसको हम विशुद्धि की बातें करेंगे, अधिक विशुद्धि है तो लंबी आयु बंधेगी। कौन सी? पुण्य, यानी जो शुभ आयु जो है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, इनको शुभ आयु कहते हैं, और जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ आयु बड़ी लंबी बनती है। अभी नरकायु, जहाँ तीव्र संकलेश है, जहाँ कषाय ज्यादा है, वह नरकायु लंबी बहुत बड़ी बन देगी। ख्याल में नहीं इसी बात? तो यहाँ क्या बता रहे है, विशिष्ट आयु आदि की भी। अब विशिष्ट आयु यानी देवायु बांधता है कि मनुष्यायु बांधता है कि तिर्यंचायु बांधता है कि नरकायु बांधता है, तो कौन सी आयु बंधेगी ये भी उसके भाव पर निर्भर है। तो उसके लिए पहले हम ऊपर श्लोक पढ़ेंगे। ये क्या है, साधन विक्री? आयु श्रेयोनुबंधी प्रचुर मुन गुणम वज्रसार शरीरम श्रीस्त्याग प्राय भोगा सतत मुदयनी दीपराढ़ गीरा देया सदस्य व्यवहरती रफतोन्माथिनी सत्विरर्थ्या स्वाम्यं प्रत्यर्थि काम्यं प्रणय परवशं प्राणिनां पुण्य पाकार। उसका अर्थ देखते हैं। पुण्य कर्म के उदय से प्राणियों को सतत कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। यानी आयु का तो बंध कभी कभी होता है और जीव के वो परिणामों से होता है। देखिए पुण्य कर्म के उदय से, ऐसा नहीं कि वो कभी कोई पुण्य बांधा था और अभी वो उदय में आ रहे, कोई भी आयु उदय में नहीं आएगी, तो कहते जो बांधी वही तो उदय में आएगी, परंतु वो शुभ भाव से वो बंधी है तो उदय में आएगी। तो कहते पुण्य कर्म के उदय से प्राणियों को सतत कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। स्वरूप्यादि गुणों से युक्त तथा वज्र की तरह अभेद्य शरीर प्राप्त होता है। ये वज्र की तरह अभेद्य शरीर क्यों कहे? जो सम्य दृष्टि देव है तो उनके क्या बंधेगा? मनुष्य गति बंधेगी, वज्र शब्द नाराज सहनन, यानी वज्र जैसा अभेद्य शरीर बंधेगा उनके। सम्य दृष्टि को तो वही बनता है। अब जो मनुष्य सम्य दृष्टि है वो देवगति बांधेंगे, वहां तो देव के जो शरीर की जो विशेषता है वहां सहनन नहीं होता है, परंतु वहां वैकृत शरीर आदि उसका बंध होगा। जीवन पर्यंत दिनों दिन बढ़ने वाली और प्रायः करके अर्थी जनों के भोग में आने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। किससे? पुण्य के उदय से। सेवा आदि गुणों से संपन्न होने के कारण उत्कृष्ट तथा शास्त्र ज्ञान से समृद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। सभा के योग्य और सबके द्वारा आदरणीय वाणी प्राप्त होती है। ये सारे पुण्य के फल बताए। ये ऑर्डिनरी पुण्य नहीं है, ये सम्य दृष्टि का पुण्य है, उसी की यहाँ चर्चा चल रही है। साधुजनों के द्वारा अभिलषणीय यानी जिसकी इच्छा की जाए उन्हें भी जो अच्छा लगे, तथा दूसरों को कुमार्ग से बचाने वाले हितों में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति रूप व्यवहार प्राप्त होता है, तथा शत्रु भी जिसकी अभिलाषा करते हैं कि हम भी ऐसे हो, ऐसा प्रभुत्व प्राप्त होता है। प्रभुत्व ने उनको कुछ ऐसे अधिकार नहीं कहना है, उसको प्रभुता ने शोभायमान पना उनको प्राप्त होता है। हाँ, बड़प्पन ऐसा है जो केवल प्रियजनों की ही परवशता स्वीकार करता है। ये सब पुण्य कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। ये ऐसा हम पढ़ेंगे तो पुण्य के लिए मन ललचाए हैं। उस पुण्य की बात नहीं है जो निकृष्ट पुण्य मिथ्या दृष्टि बांधता है। सम्यक दृष्टि के पुण्य से ये सारे फल मिलते हैं, वो सहज मिलते हैं, उसकी चाह किए बिना ही होते हैं, और वो पुण्य के लिए कुछ नहीं करता है। उसके तो रुचि अपनी है, पड़ी है निज शुद्धात्म तत्व की रुचि है, और उसके लिए जो कुछ उसके अन्य भी जो परिणाम होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं, उसके कारण उसके जो पुण्य बंध होता है, उसके कारण ये उसके उदय में उसके फल के रूप में इन सब की सहज प्राप्ति हो जाती है। आगे बतलाते हैं कि पुण्य से एक साथ बहुत फल प्राप्त होते। देखो, ये पुण्य की बात जब पढ़ता है जी, ऐसे भी प्रश्न पूछने हम बहुत जहाँ जहाँ जाते तो प्रश्नकार तो बहुत मिलते हैं ना। क्योंकि तो ये मनुष्य गति जो प्राप्त हुई, अभी हमें मनुष्य भाव मिला है, तो पुण्य के फल से मिला है कि नहीं मिला, तो इसलिए हम पुण्य को करेंगे तो आगे भी हमें अच्छा भाव मिलेगा। क्या देखो, अभी तो मनुष्य भाव मिला है ना, तो अभी मनुष्य भाव मिला है तो इसी भाव में कल्याण की बात क्यों नहीं सोचता, फिर आगे के भाव की क्यों सोचता है? भाव को बांधने की इच्छा है उसकी। पुण्य के फल में मनुष्य बना हूँ और भी पुण्य करूँ तो मनुष्य हो जाऊँ या देव हो जाऊँ, कहाँ का महाविदेह का मनुष्य हो जाऊँ? कौन से तीर्थंकर के पास जाना है भैया? दूसरे कोई नहीं चलेगी, 20 है वहाँ, नाम तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमने निमित्त निश्चित कर दिया और उनके कारण मुझे समय दर्शन होगा, ऐसा मानते हैं। समय दर्शन की बात वहां भी नहीं सोचता, बस तीर्थंकर के पास जाना है, उनको सुनना है। तो देखो, ये पुण्य कैसा है कि आनुषंगिक फल बताया। जो सच्चा धर्म जो है समय दर्शन रूपी, उसके साथ ऐसा पुण्य सहज बनता है और उसके फल की यहाँ चर्चा चल रही है। तो समय दृष्टि ऐसे फलों को सुनकर वो ऐसा उसको मन ललचाता नहीं है, तो ठीक है, तो मिलने वाला है, उससे क्या है, उसमें तो कुछ सुख है ही नहीं है, फिर भी वो सहज रूप से प्राप्त होता है। आगे का नहीं होगा ना श्लोक, अभी हम यही रुकना पड़ेगा, यही रुकेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तकनम सदा देत हो।